Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है जहां हम ताजा आर्थिक व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे चर्चा के लिए आज स्टूडियो में हमारे समक्ष आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एस पी शर्मा जी आपका मार्केट मंत्र में बहुत बहुत अभिनंदन
थैंक यू प्रिया जी थैंक यू
चर्चा शुरू करेंगे मगर उससे पहले हेडलाइंस
Benchmark domestic stock market indices end with losses. Sensex falls 275 points to close at 84,391. Nifty settles at 25,758. Most Asian stock markets end in negative territory. And Asian Development Bank raises India's GDP forecast to 7.2% for the current fiscal year.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई. Sensex 275 अंक गिरा. Nifty 25,758 पर बंद हुआ. अधिकांश एशियाई शेयर बाजार घाटे में बंद हुए और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया
And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
रुक करते हैं आज की आर्थिक खबर की तरफ. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे सत्र में गिरावट के साथ आज 0.32% के नीचे बंद हुए दोनों सूचकांकों ने दिन की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की दोपहर आते आते सूचकांक घाटे में कारोबार करते नजर आए और नुकसान के साथ ही बंद हुए सेंसेक्स 275 अंक लुढ़ककर 84,391 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 82 अंक गिरकर 25,758 पर आ गया इस बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार सूचकांक भी कमजोर नजर आए मिड कैप इंडेक्स लगभग 1.1% फिसला जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.6% नीचे आया
Benchmark domestic equity indices, Sensex and the Nifty, recorded their third consecutive session of losses, closing 0.32% down today. Both the stock market indices started the day with positive momentum. However, in the afternoon trade, they slipped into negative territory and remained in the red for the rest of the session. Sensex shed 275 points to close at 84,391, while Nifty slipped 82 points to settle at 25,758. Meanwhile, the broader stock market indices at the BSE also edged down. Mid-cap index lost almost 1.1%, while the small-cap index dipped nearly 0.6%.
सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयर नुकसान के साथ बंद हुए सबसे अधिक घाटे में रहे शेयर्स में सर्वप्रथम इटर्नल लगभग 2.9% ट्रेंट करीब 1.7% और भारतीय एयरटेल में 1.1% की गिरावट देखी गई टॉप गेनर्स में शामिल शेयर्स में सर्वप्रथम टाटा स्टील 1% सन फार्मा 0.7% से अधिक और आईटीसी में लगभग 0.6% की बढ़त दर्ज की गई
Across sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 15 out of the 21 sectors ended with losses, except FMCG, which remained unchanged. Among the key decliners, services as well as consumer durables both declined almost 1.2%, capital goods dipped 1% and focused IT slipped over 0.9%. Among the top gainers, metals advanced over 0.5%, energy added 0.2% and oil and gas rose almost 0.1%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,291 companies declined, 1,898 companies advanced and 150 companies remained unchanged.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 8 पैसे कमजोर होकर अमरीकी डॉलर के मुकाबले 89.96 रूपये पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स जो दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, अंतरदिवसीय कारोबार में 99.14 पर कारोबार कर रहा था।
The Asian Development Bank has raised its growth forecast for India to 7.2%, up from 6.5% for the current financial year 2025-26, according to its Asia and Pacific Growth Outlook report. This marks an increase of 0.7 percentage points after the country registered a robust growth in the July to September quarter and prospects for a stronger fiscal year. Meanwhile, the Multilateral Development Bank has kept its financial year 2026-27 forecast unchanged at 6.5%.
Asian Development Bank has projected the region's economy to expand by 5.1% this year compared with a 4.8% forecast in September. This improved forecast is primarily driven by India's stronger than expected growth, fueled by robust domestic consumption supported by recent tax cuts. According to the report, the financial year 2026-27 growth forecast has also been revised up by 0.1 percentage point due to reduced trade uncertainties following the conclusion of several trade agreements. Ayushi Singh for Market Mantra.
शर्मा जी, बाजार ऊंचाई पर खुलकर लगातार गिरते जा रहे हैं, ये तीसरा सत्र है गिरावट का, कौन सी ताकतें हैं जिसके पीछे है, आपका क्या कहना है इस पर?
देखिए प्राची, जो मार्केट्स हैं वो एक कंसोलिडेशन मोड में है। मार्केट्स ने न्यू हाईज की तरफ रुख किया, फिर एक दिन न्यू हाईज को क्रॉस भी किया, फिर कंसोलिडेट भी हुए। इसके पीछे जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, खास करके जो फेड का डिसीजन क्या होगा अभी, जो बहुत जल्द होने वाला है, फेड क्या रवैया लेता है, नॉट ओनली फॉर द करंट मीटिंग बट फॉर द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, 2026 का डायरेक्शन किस तरीके से डिसाइड करता है, क्या स्टेटमेंट देता है उसके ऊपर, वो स्टेटमेंट कैसा आएगा, वो सख्त होगा या नरम होगा, क्या रवैया रहेगा, तो उसी के ऊपर मार्केट्स का रुख निर्भर करेगा। और दूसरा जो है, एक ट्रंप साहब ने जो एक नया घोषणा कर दी है कि वो बासमती राइस को भी टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट और ज्यादा कॉन्शियस हो गई है, क्योंकि अब उन्होंने बासमती राइस का नाम लिया है, फिर किसी और आइटम का नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये जब से अभी हमारे देश की जो मुलाकात हुई है रशिया के प्रेसिडेंट के साथ, उसके बाद ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, शायद उनको ये रवैया नहीं अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने ऐसे अनाउंसमेंट्स
किए, आलोचनाओं
का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये कोई ऐसा तुक बनता नहीं है कि हम हमारे ऊपर इस तरीके से जो टैरिफ्स हैं वो थोपे जाएं। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारी मार्केट्स हैं, हमारे पास मिडल ईस्ट है, यूरोप है बासमती को एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो मार्केट्स का रुख है, मार्केट्स अभी एक कंसोलिडेशन मोड में, मैं कहूंगा एक न्यू हाई के आसपास होवर कर रही है, चाहे थोड़ा करेक्शन आता है, थोड़ा सा फिर अपसाइड आती है, बट दिस इज अ हेल्दी साइन ऑफ द मार्केट्स। मार्केट्स मजबूत हैं इस समय पे, मार्केट्स किसी भी तरफ से ऐसी जो बाधाएं आती हैं, जो ऐसी अनाउंसमेंट्स आती हैं, टैरिफ्स की अनाउंसमेंट्स आती हैं, या फिर फेड का क्या रवैया रहेगा, या फिर जियोपॉलिटिक्स के ऊपर कोई डेवलपमेंट होती है, तो मार्केट्स उसको बहुत नेगेटिव में नहीं ले रही हैं, मार्केट की रेजिलियंस बहुत स्ट्रांग है।
डॉक्टर शर्मा, स्पीकिंग अबाउट रेजिलियंस, व्हेन वी कंप्यूट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, नेट एक्सपोर्ट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट अलॉन्ग विद द अदर कंपोनेंट्स दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट जीडीपी। एशियन Development Bank has raised the forecast for the current fiscal year to 7.2% from 6.5% earlier. Now, this is at the macroeconomic level, the fundamental India growth story. While at the same time, we have seen that the stock market, it has reached an all-time high. But 3 days of correction that we have seen right now, what is the reason behind it? The second quarter earnings have been robust as well. Sales growth has been there. Interest rates are being reduced. This is known as the Goldilocks period. What is the thinking behind the FIIs and FPIs being the net sellers in the market still? We know that DIIs are the net buyers in the market. We don't have the results of today's equity performance, but yesterday definitely the FIIs, FPIs were the net sellers. So what's happening? Why is there selling pressure on the part of FII still?
Yes, Arjun, firstly, the growth numbers as projected by EDB at 7.2%. That is very realistic. I would say our numbers for the current year, current financial year for 25-26 started from 6.3, then revised to 6.5, thereafter 6.9. Now the numbers are at 7.3% by the Reserve Bank of India. And ADB is forecasting at around 7.2%. Many organizations are forecasting at around 7.4 and 7.5% also. But the fact is that we grew at 8% in the first half. So now you can imagine the full year growth trajectory. I believe this number will be surprising once again. And our growth may be somewhere between 7.5 to 8% for the whole year. On the back of various reforms undertaken by the government, particularly the GST reforms, next gen GST reforms, and a great consumption story of the Indian economy, supported by the states and supported by the rural development and supported by the ease of doing business and ease of living. So now coming to the stock market, why the stock markets are in such kind of cautious mood? Because of the consolidation. Now we are hovering at around all-time high. Though there are some corrections, but we have touched once again the all-time high numbers on the back of such kind of developments that the GDP numbers are very robust. Our macroeconomic fundamentals, whether the IIP or the exports or the inflation trajectory, all are working in the benign conditions. So now going forward, the Fed rate direction, second, the Trump tariffs, these two major factors are very, very important and crucial for the growth of the markets in the coming times, because these are very sensitive points as Trump is again threatening for the more tariffs and Fed maybe some kind of cautious approach because of the inflation trajectory. So if they are liberal, then the markets have a great room to move forward and to make new high in the coming times.
शर्मा जी, दिसंबर में नॉर्मली FIIs जो हैं वो बाजार से पैसे निकालते हैं, तो FIIs और DIIs की गतिविधियों का कुछ असर दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से?
ठीक है, ये एक पुराना एक प्रचलन है कि भाई FIIs जो है दिसंबर में पैसा निकालते हैं, लेकिन ये हर एक साल में ठीक नहीं है, ट्रू नहीं है, आमतौर पर कहा जाता है, बट अभी ट्रेंड मैंने पिछले 2-3 साल से देखा है कि दिसंबर में ऐसा कोई मेजर करेक्शन नहीं आया, ना ही वो लास्ट दिसंबर में आया था, ना ही उसके पहले वाले दिसंबर में आया. थोड़ा बहुत करेक्शन स्वाभाविक है, वो होता है ईयर एंड पे, क्रिसमस के डेज में कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती है, जिनको प्रॉफिट आ रहा है, मुनाफा वसूली जिसको हम कहते हैं. लेकिन मैं कभी अभी इस जंक्चर पे ऐसा कोई करेक्शन मेजर नहीं देख रहा हूं कि FII अपना पैसा निकालेंगे. जैसे अर्जुन जी ने बताया कि मार्केट्स के ऊपर असर नहीं होगा, क्योंकि मार्केट्स को मेजर सपोर्ट जो है DIIs का है. नाउ वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दी FII's मनी, वी हैव आवर ग्रेट स्ट्रेंथ. तो मैं ये समझता हूं कि मार्केट्स एक रेजिलिएंट मोड में रहेंगे और मार्केट्स में कोई ऐसा मेजर करेक्शन आने वाला नहीं.
डॉक्टर शर्मा, अगर हम इफ यू लुक एट द डिसंबर फ्यूचर्स, इट्स एक्चुअली ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम इन द FNO मार्केट विच इज मोर देन व्हाट द सेंसेक्स इज राइट नाउ बाय एन एडिशनल 300 to 400 पॉइंट्स. दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट द मार्केट टू बी इन द फ्यूचर इन द कैश सेगमेंट इटसेल्फ. बट जस्ट कमिंग बैक टू द डोमेस्टिक institutional investors who have been the net buyers in our market, mutual funds have bought 25,000 crore rupees worth of shares in the equity segment, but that's come down, while at the same time ETFs have gone up, exchange traded funds, gold ETFs have gone up to almost 7,000 to 8,000 crore rupees for the month of October as well. And at the same time, they're also buying gold, because that is the underlying asset behind the mutual fund that they are selling. So there seems to be a shift in even the domestic institutional investment. There seems to be asset allocation or reallocation from equity to gold and ETFs, also investing in the equity market.
Yes, Arjun, that is happening worldwide, not only in the equity market, but in the countries also. Countries are also replacing dollar. They are accumulating gold in place of dollar. So slowly, slowly, this process is now becoming more and more stronger. In the coming times, you will see the more dollar, more gold in their forex reserves because of the diminishing trajectory of dollar because of various global factors. So I believe this is the natural process, and this is healthy process that people are also adding gold in their respective portfolios because the future is uncertain for the global markets. Though we are very, very certain about the Indian economy that we will grow somewhere between 7.5 to 8%, but the futuristic growth trajectory of the world economy is very, very problematic because of so many headwinds from the geopolitics or the Trump tariffs or the Fed rate direction.
Yeah. So speaking about bullion and now coming back to basic metals, that is what the companies basically sell, you know, like Tata Steel, Hindustan Zinc. Now, Hindustan Zinc, as an example, has gone up by 4% because silver has gone up right. as well. And Nifty Metal went up marginally today by 46 basis points today. And it's also a key export for companies who are based out of India. What is the future of Nifty Metal? We are seeing a lot of revaluation of these stocks. Despite being hit by the tariffs, their valuation continues to remain high.
Yes, I believe this will remain steady in the coming times. And because the metal index or the metal trajectory is going to become more strong in the coming times, so this will support the Nifty metal index.
And if you just come back to, you know, the type of investments, do you think now the future is in the bond market? Because equity investments have hit the all-time high. There seems to be correction right now. There's also asset reallocation. If you look at the 10-year treasury bond yield, which it's at 6.33%, inflation is low. And do you expect that there'll be a shift from equity even to the bond market?
No, I don't see, Arjun, that that shift is going to take place because we have a great room in the equity markets also. Because numbers, inflation numbers are very, very benign at 0.25%. So there is another room to cut the repo rate in the coming times that will support the equity markets. And the second is from the Fed side. If the Fed is liberal, then the equity markets can make the new highs in the coming times. Yeah. So the great room is there in the equity market. Still, there is a lot of scope to make new and new highs in the coming times.
शर्मा जी, दिसंबर के आखिरी दिनों में निवेशकों को किन आर्थिक आंकड़ों पर नजर रखनी चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेशन भले ही बहुत बिनाइन कंडीशन में है 0.25, लेकिन फिर भी नजर रखनी बनती है बिकॉज कई बार अचानक से स्पाइक आ जाए तो वो एक बहुत मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट उसी के दायरे में मतलब अच्छे से ग्रो कर रही है. दूसरा है फेड रेट का जो रवैया रहेगा, जो उनका डिसीजन रहेगा, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए. और तीसरा जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे, एक्सपोर्ट्स हमने देखा कि बहुत रेजिलिएंट रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें ध्यान रखना होगा आने वाले नवंबर दिसंबर के आंकड़े कैसे आते हैं. अगर एक्सपोर्ट्स हमारे स्ट्रांग रहते हैं तो हमारा जीडीपी को अच्छी सपोर्ट मिलती है. दैट वी आर परफॉर्मिंग वेल इन द प्रॉब्लमेटिक वर्ल्ड, तो हमें बड़ा अच्छा उससे सपोर्ट मिलती है. एंड फोर्थ, जो ट्रंप साहब का रवैया रहेगा कि वो आने वाले टाइम में एक समझौते पे आते हैं या फिर कुछ और टैरिफ लगाने की सोच बना के रखे हुए.
जी, आइए रुख करते हैं एशिया और यूरोप की बाजार की तरफ. एशिया के प्रमुख शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए. चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सूचकांक दोनों ही 0.2% से अधिक गिरे. जापान का निकेई इंडेक्स 0.1% गिरा और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स में मामूली गिरावट दर्ज की गई. वहीं हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.4% से अधिक बढ़ा. प्रमुख यूरोपीय सूचकांक आज मिले जुले रुख के साथ कारोबार कर रहे थे. जर्मनी का डैक्स 0.5% गिरा और फ्रांस का कैक लगभग 0.4% नीचे नजर आया, जबकि लंदन का फुटसी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक लगभग 0.3% की बढ़त में नजर आया.
Moving on to the US stock markets, Wall Street closed on a mixed note yesterday as investors braced for the upcoming Fed Reserve policy decision. Among the major stock market indices, the Dow Jones Industrial Average fell by nearly 0.4%, while the S&P 500 dipped nearly 0.1%. In contrast, the Nasdaq Composite Index managed a modest gain of over 0.1%. We saw Nifty IT today impacted by the FOMC meeting, which is taking place right now. The Fed Reserve's discount rate, which is the equivalent of the repo rate, is at 4%. So what is the likely decision of the Federal Reserve? And how is that going to impact not only the U.S. markets, but our market?
I think Fed will be more and more liberal now because of the various headwinds to the U.S. economy. They will support the economy, support the consumers, support the producers, as they have increased the tariff significantly. They have to support the manufacturing processes to meet up the demand trajectory. So their decision is expected to be liberal. Second, the impact on the global markets will be very, very strong as they are. That will be the direction for the next year, 2026. So the markets will be very, very positive if Fed becomes very liberal in the next decision.
And what if you look at the Asian markets, the Nikkei 225 slipped by only 0.1%, but there's a lot of news about the carry trade. You know, the yen is borrowed at a very low cost, and then that is used to trade in the futures and options market. And then, of course, that borrowed capital is returned to the financier concerned. And right now, if you look at the US dollar, Japanese yen, it's trading at almost 157. How is that likely to impact their stock market?
I think if the Fed becomes liberal, then the effect will be positive on the stock markets throughout the world. There will not be any negative impact on any market in the financial segment.
रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों की तरफ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों से आपका पैसा आपका अधिकार अभियान में भाग लेने का आह्वान किया. लिंक्डइन पर एक पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नागरिकों के लिए एक भूली हुई वित्तीय संपत्ति को एक नए अवसर में बदलने का मौका है. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को उनकी अज्ञात जमा राशि, बीमा राशि, लाभांश और अन्य वित्तीय संपत्तियों को फिर से पाने में सक्षम बनाना है. शर्मा जी, मैं चाहूंगी कि आप एक कमेंट इस पर दें.
ये बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, मैं ये कहूंगा, क्योंकि काफी लोग, मेरे ख्याल से बहुत ऐसे लोग हैं जो कई बार उनके अकाउंट्स डोरमेंट हो जाते हैं, वो उनका अपना मनी जो है क्लेम नहीं कर पाते, कई बार ट्रांसफर्स हो जाती हैं. एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर में आ गया लेकिन वहां पे जो कुछ बचा हुआ पैसा था उस अकाउंट में उसको क्लेम करने के लिए नहीं जा रहा है, अकाउंट भी डोरमेंट हो चुका है. और उसको अब ये जो ऑनलाइन सुविधा रहेगी इससे बहुत बड़ा फायदा होगा और इकोनॉमी में बड़ा अच्छा पैसा, लगभग कोई 2,000 करोड़ तो डिसबर्स हो चुका है. और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि बहुत बड़ी राशि है जो अभी अनक्लेम्ड है, तो अगर ये पूरा डिसबर्स हो जाता है तो इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा और लोगों को उनका खोया हुआ धन वापस मिलेगा. ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी वो उम्मीद ऑलरेडी काफी वर्षों से छोड़ बैठे थे. अगर वो 20 वर्ष भी भूल चुके हैं तो भी वो अपना पैसा अभी भी क्लेम कर सकते हैं. एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं ये कहूंगा कि जिसमें हम सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उसी डायरेक्शन में ईज ऑफ लिविंग के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप सरकार ने लिया है.
In more news, Foreign Secretary Vikram Misri met US Deputy Trade Representative Rick Switzer. Ministry of External Affairs said that the leaders discussed a strong India-US economic and technology partnership, ongoing trade negotiations and opportunities to boost two-way trade and resilient supply chains. Do you think that the 50% tariff and penalty is likely to be withdrawn in the future? And now you have Mark Rubin also talking about the Quad being revived. So India is not only a trade partner but a military partner also.
Arjun, I think US is now facing some kind of trouble because of the high tariffs, and they'll face the inflation trajectory going up. So now they have to reduce or they have to come down in their thoughts of the high tariffs, that they will survive with the high tariff. They are not able to grow significantly. So going forward, I am expecting the status quo in the coming times back to square one actually.
जी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मुंबई में प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के MD और CEO से मुलाकात की और उनसे हाल ही में की गई दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने का आग्रह किया ताकि सतत आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिल सके. फरवरी 2025 से RBI ने प्रमुख नीतिगत दर में 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की है जिससे ये घटकर 5.25% पर आ गई है.
सो दिस इज अ वेरी की डिसीजन एज फार एज आवर रेपो रेट इज कंसर्न. 5.25% you have clearly the inflation rate at below 2% as far as CPI is concerned. What type of credit growth are we likely to witness now in this Goldilocks period?
I think credit will now in a higher and higher trajectory because already we are growing more than 10% in the credit growth. So now this growth will become more strong and resilient in the such kind of developments like repo rate is 5.25 and inflation is 0.25. So this is the great, I believe, the unique combination of repo rate and inflation numbers. So if the inflation remains same or benign in the coming times, then there is a great room to reduce the repo rate further to the level of 5% or even 4.75%.
So the central bank clearly plays a very important role when it comes to banking and finance. As far as India is concerned, the net interest income of banks has gone up. We saw that in the second quarter. We saw Bank Nifty also go up, even though it's gone down today. How do you see the PSU bank merger affecting the markets?
That will be very, very positive effect for the stock markets.
Let's have a look
for the whole banking sector.
For the entire banking sector. Let's have a look now at the energy market, beginning with crude oil. Global crude oil prices rose today after falling 2% in the previous session. Investors are keeping a close eye on peace talks to end the Russia-Ukraine war and the looming decision on U.S. interest rates. Brent crude was trading over 0.4% up at $62.21 per barrel, while WTI crude was trading more than 0.5% up at $58.57 per barrel when reports last came in. We saw President Vladimir Putin visit to India, and according to figures, 38% of crude output from Russia is being sent to India. To what extent do you see that going up, especially in this high tariff environment created by Trump?
I think, Arjun, that will strengthen further. And now we are not only restricted to the crude trade, we are going beyond the energy trade, and we are entering into so many new areas like the pharmaceutical, and the fertilizer is already strong, and we have now great synergies with the Russian economy. And I think there are a lot of complementarities between Russia and India to move forward and to make this trade more and more resilient and strong in the coming times.
And what is the future as far as India's current account deficit is concerned, and the amount of money that India saves in the form of foreign exchange? Are these rupee-denominated trades?
This trade with Russia is favorable for our current account deficit because we are purchasing at a lower rate. So current account deficit also becomes benign in scenario of such kind of developments.
Well, let's have a look at the bullion market now. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading marginally down at 1,30,040 rupees per 10 grams. And silver was trading over 1% up at 1,89,910 rupees per kilogram a short while ago.
Multi-commodity exchange mein taza samachar milne tak, multi-commodity farvari anubandh wala sona 0.2% kamzor hokar 1,29,882 rupees prati 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि मार्च अनुबंध की चांदी 1% से अधिक की बढ़त के साथ 1,90,060 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।
डॉक्टर शर्मा, द सुपरस्टार इन द बुलियन ट्रेड इज सिल्वर, बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फिगर्स, द प्रिंसिपल बायर्स ऑफ सिल्वर टुडे इज इंडिया। हाउ हैज दैट टेस्ट चेंज्ड?
यस, बिकॉज़ we are the great buyer of such kind of metals, actually, like gold and silver. So the gold prices are very high. So some kind of substitution effect is taking place. People are now tilting towards silver also, that this will, this is also a great asset to be accumulated. So that's why that is happening in the market, actually.
And very briefly, central banks are clearly buying gold, even the smallest ones are. But so yes, are ETFs, exchange-traded funds in the bullion market.
Yes, because Arjun, world economic conditions are very, very volatile and uncertain. In such kind of scenario, the gold is becoming more and more strong in the trajectory of the central banks because of the futuristic uncertainty. So I believe the gold prices will remain steady in the coming times, and there are chances of to make new highs in the coming times.
शर्मा जी, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर.
Benchmark domestic stock market indices end with losses. Sensex falls 275 points. Nifty settles at 25,758. Most Asian stock markets end in negative territory. And the Asian Development Bank raises India's GDP forecast to 7.2% for the current fiscal year. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
Thank you.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.